अब अगला टॉपिक है जो बहुत ही अहम टॉपिक है, हम इसको एक साथ लेकर जहाँ तक आए थे फिर उसके बाद इंशाल्लाह बात करेंगे। सूरत नहल आयत नंबर 125, 125 नंबर आयत सूरत नहल। आप कह लीजिए कि दीन के बुनियादी असूल मुरतब करती है ये आयत, कैसे देखेंगे हम इसको। उदु इला सबीली रब्बिक बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, आप दावत दीजिए अपने रब के रास्ते की तरफ दानाई के साथ और अच्छी नसीहत के साथ। और फिर इसके बाद वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, और इनसे मुनाजरा कीजिए, बहस कीजिए मगर बहुत ही अच्छे तरीके के साथ। इन्ना रब्बक हुवा आलमु बिमन दल्ल अन सबीलिही, यकीनन आपका रब खूब वाकिफ़ है इनसे जो इसके रास्ते से भटक गए हैं, और वहु आलमु बिल मुहतदीन, और उनसे भी जो के राहे हिदायत पर हैं। अपने मौजू के एतबार से बड़ी अहम आयत है कि एक बुज़ुर्ग जब इनका दुनिया से इंतकाल होने लगा तो किसी ने उनसे कहा कि आपने इतनी लंबी उम्र गुजारी है तो हमें कोई नसीहत करें, क्योंकि आप देखिए कि तजुर्बे का भी तो एक अपना हुस्न होता है ना। तो उन्होंने उस वक़्त जो नसीहत की कि काश लोग सूरत नहल की इन आखिरी आयतों को थाम लें। तो हकीकत यह है कि ये आयतें हमें दूसरों को दीन की दावत देना सिखाती हैं। जब भी हम ये बात करते हैं कि हम मुसलमान हैं और हमें दूसरों को दावत देना है, तो दिल में बहुत सारे लोगों के जज्बात उभरते हैं कि हम कैसे हम दावत दें। देने की नीयत भी होती है, इरादा भी होता है, लेकिन फिर जब अमली तौर पे हम देखते हैं तो उस दावत देने के रिएक्शंस हमें दिखने लगते हैं। तो इंशाल्लाह इन आयतों की रोशनी में हम डिटेल से बात करेंगे कि दावत कैसे दें, क्योंकि घरों में झगड़ा शुरू हो जाता है जब हम किसी बच्चे को नमाज़ के लिए कहते हैं, शौहर को आप किसी अच्छे बुरे पे टोकते हैं तो झगड़ा है, बेगम साहिबा नाराज़ हो जाती हैं जब उनको रोके। तो पहली बात तो ये समझिए कि लफ्ज़ दावत बहुत वसी लफ्ज़ है, इसका ताल्लुक हर इंसान के अपने अमल से शुरू होता है जिसका असर वह दूसरों पर छोड़ता है, और इसका ताल्लुक फिर बड़ी बड़ी जमातें और गिरोह की सूरत में भी सामने आ जाता है जबकि हम दूसरों को दीन के ऊपर बुलाते हैं। तो दावत हर बंदे की उसके अपने माहौल और अपने हालात के मुताबिक होती है। इन आयात में तदरीजन तीन स्टेप्स बताए गए हैं। पहला अगर आप हाईलाइट करके देख लें अभी भी, तो उदउ इला सबीली रब्बिका, दावत दीजिए लोगों को अल्लाह के रास्ते की तरफ। कैसे? आप देखिए कि लफ्ज़ उदउ वाहिद है, शुरू में दावत देने वाला तन्हा होता है। वो कहते हैं ना कि तन्हा चले थे, लोग मिलते गए और काफला बनता गया। ये काम जब बंदे को बात समझ आ जाए तो शुरू हो जाना चाहिए। इसके लिए किसी टीम के बनने का इंतज़ार करना, कोई स्लोगन मिलना, कोई टाइटल मिलना, कोई शहर में उसकी शोहरत होना, ये शर्त नहीं है। इब्तदाई दर्जे पे जब इंसान दीन की दावत देता है ना तो इसको दावत कहते हैं। आम लोग, पब्लिक, नए नए लोगों को दीन की तरफ बुलाना, इसको कहते हैं दावत। इसी को यहाँ बिल हिकमा कहा गया। और आप देखिए कि लफ्ज़ हिकमत कुरान पाक में मुख्तलिफ़ जगह पे आया है, और इसको खैरे कसीर भी कहा गया। अगर आप सूरत बकरा की आयत खोल कर देख लें तो अल्लाह सुबहान तआला फरमाते हैं सूरत बकरा 269 में, वमई यू तल हिकमत फ़कद उतिया खैरन कसीरा, जिसको भी हिकमत दी गई उसको खैरे कसीर दी गई। कुरान पाक में तीन मुकामात, कौन से? सूरत बकरा आयत 129, आले इमरान 164 और सूरत जुमा आयत नंबर 2। इनमें मराहिल और दर्जात का जिक्र है जिनके तहत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की तरबियत की थी, और ये आपकी उस तरबियत का असर था कि आपके बाद लोगों ने कई नस्लों तक इस पैगाम को मनोअन रखा। ये तो बाद में फिर नए लोग आते गए और वो शम्मा से दूरी पे अंधेरे भरते जाने वाली कैफियत हुई, लेकिन आप नबी सल्लम की ज़िंदगी में जो बुनियादी चीज़ देखेंगे ना, वो हिकमत थी। हिकमत ही वो गुण है जो दावत को मौसर बनाता है। तो इब्तदाई दर्जे पे जब किसी नए बंदे को दीन की दावत दें, नए नए लोग हैं, अभी भोले भाले हैं, अभी गुनाह कर कर के पलट रहे हैं, तो फिर हकीमाना दावत देनी चाहिए। ये कब होती है जब लोगों को भी पता ही नहीं है, अभी इंट्रोडक्शन ही नहीं हुआ, वो अल्लाह को नहीं जानते, रब को नहीं जानते, तो आप उनको दीन की तरफ बुला रहे हैं, तो हिकमत से बात करें। जब किसी नए बंदे को, और अब इसमें आपका बेबी भी है जिसको आप 2-4 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं अल्लाह से मिलाना, इसमें आपका 7-8 साल 9 साल का बच्चा भी है जिसको नमाज की दावत दे रहे हैं, और इसमें आपकी वो 12-13 साल की जवान होती भी बच्ची भी है जिसको आप हिजाब और लिबास के तकाजे पूरे करवाना चाहते हैं, और इसमें आपके शौहर साहब भी हैं जिनको आप नमाज का और दाढ़ी का आदि करना चाहते हैं और उनके सिगरेट छुड़ाना चाहते हैं। शुरू दर्जे में किसी लेवल पे हो, आप जब भी किसी से इब्तदाई तौर पे दीन की बात करें तो हिकमत होनी चाहिए, हकीमाना अंदाज हो, नेमतों का जिक्र करें, बच्चों को बताएं अल्लाह कौन है कैसा है, शुक्रगुजारी की रग़बत हो, थॉट प्रवोकिंग स्टाइल हो। हिकमत का तकाजा है कि आप कम बोलें और अगला ज़्यादा सुने, कुछ खुद ज़्यादा बोलते रहते हैं अगले को सोचने का मौका नहीं देते। उनको बताओ कि अल्लाह को पहचानो, वफ़ी अनफुसिकुम, अपने अपने अंदर झांको, तुम्हारे तो अपने अंदर अल्लाह के ताला ने कितनी वसअतें रखी हैं। वो शायर ने भी कहा ना कि डूब के खुद में पा जा सुराग़े ज़िंदगी। तो गोया के शुरू में इंसान को बात बड़ी सॉफ्ट करनी चाहिए, जज्बातियत भी हो, सॉफ्टनेस भी हो, इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि अगले को बात बुरी ना लगे। अभी इसकी मज़ीद डिटेल करेंगे, लेकिन आप तीनों स्टेप्स की सिर्फ तारीफ समझ लें तो आपको अपनी बहुत सारी गलतियां तो यहीं दिख जाएंगी। तो नए लोगों को दावत दें तो हिकमत से दें, प्यार से दें, बहुत सोच के बोलें, पहले उनको अल्लाह के करीब करें, फिर उसके बाद दूसरी बात करें, उसके बाद अगला दर्जा है। ये उन लोगों को होता है जिनको आप काफ़ी अरसे से कह चुके, कई साल से वो आपके पास आ रहे हैं जा रहे हैं और आप उनको सुना रहे हैं, इसमें फिर बच्चे भी हैं, घर वाले भी हैं, और आपके स्टूडेंट्स भी हैं, और आपका स्टाफ भी है, और आपकी टीम भी है, और आपके वो सारे ख़ानदान के लोग हैं जो माशाल्लाह जद्दी पुश्ती खुद को मवाहिद और कह रहे हैं, जो सुन रहे हैं, दर्स भी सुनते हैं, जुम्मे भी सुनते हैं, तरावियाँ भी सुनते हैं, उलमा के साथ अपनी निस्बत भी जोड़ते हैं। अब इनके साथ जो तर्जा होता है ना, ये दावत से ऊपर उठ के दीन को नाफिज करने का जज्बा होता है कि अब अमल तो करो। अमूमन ये बात हम सुनते हैं ना कि इस्लाम को नाफिज करो, तो कहाँ इस्लाम नाफिज करो, ज़ात पे करो। इसमें क्या होता है अंदाज, हाकिमाना। पहला क्या था, हकीमाना, हिकमतें हो, ये शुरू की हिकमतें होती हैं, क्योंकि 5-10 साल से दीन से जुड़े हुए लोग भी बेअमल हैं, तो अब कोई हिकमत नहीं है, अब हुक्म दें इनको, हुक्म दें फिर अब इनको, दो टोक बात करें। ऐसे लोगों से दो टोक बात हो जाएगी, जज्बात से ऊपर उठ के बात करें, ऐसे लोगों को दावत देते वक्त अमल की रग़बत दिलाएं, कदर सख्ती हो, अमल के नुक्ते वाज़े करें। ऐसे वक्त में लोगों को बहुत लॉजिकल बात करनी चाहिए, इंशाल्लाह मैं एक और भी तरतीब देखेंगे इसके बाद। अब जब लोग सुन सुन के सुन हो गए तो फिर आप उनको तसल्लियाँ देते रहे, नहीं शायद अल्लाह आपको कौन सी बात पे बख्श दे, शायद अल्लाह को आप पे प्यार ही आ जाए, आप सूद खाते रहें खिलाते रहें, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला शायद आपकी तहज्जुदों से खुद सोच दे। कभी भी लोगों को ये झूठी तसल्लियाँ ना दें, दो टोक बात करें कि अल्लाह का हुक्म ये, फिर अल्लाह का आपके साथ मामला जो है वो अल्लाह जाने और आप जाने। ये है सेकंड फेज़, सेकंड राउंड ऑफ दी दावा। अब इससे भी ऊपर उठ के एक आखिरी दर्जा होता है, तीसरा दर्जा। ये वो है सारे हुक्मों के बावजूद, सारी बातों को सुनने के बाद भी कोई नहीं मानता, टस से मस नहीं हो रहे कुछ कामों में, तो फिर आखिरी दर्जा है। ये कब, जब खैर ही बाकी कोई नहीं, और ये होता है मुहाजरा, हिजरत का रास्ता, मुहाजिरन छोड़ना, इतमाम हुज्जत। इसमें फिर अंदाज़ क्या होगा, लकुम दीन हकुम वलियत दीन, तुम्हारा दीन तुम्हें मुबारक, मेरा दीन मेरे लिए, ये जुदाई का अंदाज़ है। फिर ऐसे लोगों से बात करते हुए आप या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कहेंगे, हाँ फिर इनको या अय्युहल्जाहिलून कह सकते हैं, या अय्युहल्काफिरून कह सकते हैं, और ये वही अंदाज़ होता है कि जो नबियों ने अपनी दावत के आखिरी दौर में इस्तेमाल किया कि जाओ फिर तुम भी जाओ, फन तज़िर इन्नी मियाकुम मिनल मुंतज़िरीन, तुम भी इंतज़ार करो, मैं भी देखता हूँ अब तुम्हारे ऊपर क्या सख्ती आने वाली है। गोया कि ये आखिरी दर्जा बीमारी का, कि पहुँचाने वाले ने पहुँचाने का हक अदा कर दिया और झुटलाने वालों ने झुटलाने का हक अदा कर दिया। तरतीब समझ आई, पहला दर्जा हिकमत का, दूसरा दर्जा हुक्म का या हाकमियत का, और फिर तीसरा दर्जा लेट देम डू, करो फिर जाओ तुम्हारी मर्ज़ी, जो भी करना चाहते हो कर लो। आम लोगों की दावत में गलती क्या है कि वो पहला दर्जा भी छोड़ देते, दूसरा भी नहीं, पहले ही दर्जे पे मुहाजिरन वाला अंदाज़ अख्तियार कर लेते। शुरू में ही लोगों को ताने, अल्लाह पूछेगा, मारेगा, नहीं पढ़ते जाओ फिर आग में जाओ। यानी नबियों ने 40 40 साल की तबलीग के बाद लोगों को जो धमकियां दी थी ना, वो हम लोगों को पहले दूसरे हमले में करने लगते हैं। नुकसान क्या होता है कि फिर दीन की दावत मुअस्सर नहीं रहती। अल्लाह सुब्हान तआला यहाँ यही बताते हैं कि लोगों को पहचानो। आप देखिए कि दावत का काम इतना सेंसिटिव है जैसे गोश्त काटना। आप सबने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि घर में गोश्त काटने के लिए वो छुरी कारामत नहीं होती जिससे अमूमन आप फ्रूट काट लेते हैं। फ्रूट तो आपका वो कटर से भी कट जाता है। आप उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के टूल्स रखते हैं और बहुत तेज़ छुरी के साथ अगर आप फ्रूट काटने लगें तो बाज़ दफ़ा आपका अपना हाथ कट जाता है। तो जब किसी की बुराई पे तनकीद करते हैं ना, तो वल्लाह ही उसको भी हम काटते हैं, माने ना माने। चोट पड़ती है कि नहीं? कोई आप पे तनकीद करे कि आपको अच्छा लगता है? आप तो कांप के रह जाते हैं। अब जब उसके ऊपर चोट पड़ी तो ऊपर भाहा भी रख दो। हकीम वाला काम करना पड़ेगा। हकीम क्या करता है? पहले नश्तर लगाता है, फिर उसके ऊपर भाहा रख देता है। ज़रूरत पड़ेगी बात करने की, आधे जुमले में तनकीद करें और दो जुमले उसके बाद तारीफ़ के और उसकी हिमायत के बोल दें, हाँ मुझे पता है आप करना चाहते हैं, अभी आपसे हो नहीं रहा। मुझे पता है आप छोड़ना चाहते हैं, अभी आपसे छूट नहीं रहा। आप ये चाहती हैं वो नहीं कर पा रही। इस अंदाज़ से आप देखेंगे कि लोगों को बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे तो लोग सोचेंगे कि आप उनके एज पे खड़े हैं। आप देखिए कि माएँ बच्चे को नहलाने लगती हैं ना, तो पहले हाथ पानी में डाल के देखती हैं कि पानी ज़्यादा गर्म तो नहीं। फीलर्स होते हैं कि पहले देख लें ज़्यादा पानी गर्म तो नहीं है। दावत देते वक्त पहले फील कीजिए कि आपका मरीज़ किस दर्जे का है। डॉक्टर के पास जब मरीज़ जाता है तो डॉक्टर एकदम उसको पकड़ के इंजेक्शन नहीं लगाता, टेस्ट करता है, पैच लगाता है छोटा सा कि ये दवाई रिएक्ट तो नहीं करेगी, ये मुनासिब तरीका है, वक्त है कि नहीं। तो जब डॉक्टर ये काम करे तो रूहानी डॉक्टर, जिसको आप मुबल्लिग कहेंगे और दाई दीन कहेंगे, वो ये काम क्यों ना करे। इसके लिए इंसान को सबसे पहले उदु इला सबीली रब्बिक, नोट कीजिए लफ्ज़ सबीली रब्बिक, पहला कदम है दावत का। उदु क्या है? दावत, इन्विटेशन। और लफ्ज़ इनवाइट करने के साथ आप अपनी शादी या किसी पार्टी का कोई इनविटेशन कार्ड सामने रख लें। जब भी लोग इनविटेशन देते हैं तो क्या अंदाज़ होता है? धमकियों वाला, आते हो तो आओ, नहीं आते तो ना से, खा लो पी लो, वक्त पे ना आए तो कुछ नहीं मिलना खाने को। हम उसमें कितने मीठे मीठे लफ्ज़ लगाते हैं, आपकी आमद हमारी खुशी का ज़रिया, हमें इज्जत बख्शे, हमें ये करें वो करें। फिर लोग आते हैं, खूबसूरत अंदाज़ होता है, उनको अच्छा लगता है, हमें इज्जत दे, गिव अस ऑनर। और जितने नर्म लफ्ज़ होते हैं उतनी खुशगवारी का एहसास होता है। तो लिहाजा जब दीन के नाम पे लोगों को दावत दें, अपने फ्लायर्स बनाएं, अपने कार्ड छपवाएं, तो उसमें फिर आप ये नहीं लिखेंगे कि अपने आप को आग से बचा लो, जहन्नमी हो, आग में चले जाओगे। न्यू लोगों के लिए जो कार्ड छपते हैं या जिसको आप इनविटेशन लेटर कहते हैं या आप फ्लायर कहते हैं, कभी उस पे एक भी नेगेटिव बात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी बात, मुख्तसर बात। पहले दौर में लोगों का मिजाज शायरी का था, लोग पोइटिक बातें करते थे, शेर लिखते थे, आए आपके लिए पलकें बिछाएं, दिस एंड दैट। आज के बच्चे आपकी ये बातें नहीं समझेंगे। जब कोई फ्लायर बनाएं तो क्या करें? चेक करें कि आपका ऑडियंस कौन है। ये जो कोर्स या लेक्चर या क्लास है, ये इसका ऑडियंस कौन है? पाकिस्तानी पुराने दौर की औरतें हैं तो आप शेर भी लिख दें, आप उसमें दो चार जुमले भी खूबसूरत लिख दें, आ जाएंगे वो। लेकिन यूथ है, उनको ये चीज़ें नहीं मायल करती, उनको समझ ही कोई नहीं आनी। आप उनके लिए क्या करें? दो टोक लिखें, इन्फॉर्मेशंस दें। वो टिक टिक चाहते हैं, कब होगा शुरू, कब ख़त्म होगा, ड्यूरेशन क्या है, फ़ीस क्या है। जैसे आज वेस्ट का स्टाइल है, हर चीज़ क्लियरली पता होती है, हैंकी पैंकी नहीं। औरतों को पहले बता दें बहुत सारी बातें तो वो घबरा जाती हैं, और बच्चियों को पहले ना बताएं, बाद में पता चले तो वो बाद में छोड़ देती हैं कि शुरू में नहीं बताया गया। तो ये भी हिकमत है, ये एक पूरा पीछे दिमाग चलता है, किस को बात पहुंचानी है। मर्दों को बात करनी है, सीधी सीधी बात करें, वो इधर उधर की नहीं सुनते। वो इतनी देर में कहते हैं अच्छे काम की बात बताओ, काम की बात क्या? आप मर्दों का फ्लायर बनाएं और उसमें पहले लिखें, आते हो तो आओ, बताते हैं तुम्हें क्या, देखिएगा आएंगे तो पता चलेगा, कि वो कहते हैं तुम अपने घर में रखो। उनको सीधी सी बात चाहिए, आज शाम 7 से 8 बजे एक स्कॉलर आ रहे हैं और उनका लदर सुन लें, टॉपिक भी लिख दें। बाद लोग सिर्फ इस सोचते नहीं आते कि टॉपिक को नहीं लिखा हुआ। तो ये सब हिकमतें, जो बंदा साइकोलॉजी जानता है उसको लोगों की साइकिक पढ़नी आती है, लेकिन लोगों को प्यार से बुलाएं, मोहब्बत से बुलाएं। फिर आप देखिए कि कार्ड जब लोग देते हैं तो फेंक जाते हैं हमारे घरों में आके, बस लोग तो आते ही नहीं, कहते हैं कार्ड मेल में क्यों भेजा, खुद क्यों नहीं देने हैं। अपने बच्चों के कार्ड और शादी के सद्दे देने के लिए तो जोड़े पहन के सज संवर के जाएं। बल्कि मैंने देखा है कि पहले दौर में लोगों ने कुछ लोग रखे होते थे, मैंने सुना है गांव में, तो बल्कि हमारा एक बाबा था सुनाता था, नाई होते थे तो वो लोगों को कार्ड देने जाते हैं, सुना मैं आपने ये बात, और जिसको वो शादी का बुलावा देता तो वो आगे से उसको या जोड़ा देते थे या शायद चावल खाना कुछ देते थे, कुछ ना कुछ देते थे कि जी ये शादी का कार्ड लेके आया। अच्छा, शादी का कार्ड लेने वाले को तो जोड़ा मिले, और आप किसी को फ्लायर कटक से फेंक दें कि बस जी ये आपको आना पड़ेगा, और फिर टैक्स मैसेज भी आपका अल्लाह के हुक्म से इतना लंबा हो कि अगला कह के शुरू छोड़ो आखिर पढ़ते हैं आखिर में लिखा हुआ क्या, नहीं आएंगे लोग। हम खुद से पूछें, हमारी दावत नाकाम क्यों है? क्या मैं लोगों के मिजाज को समझे बगैर दावत देती हूँ? फिर आप देखिए कि बाज लोग दावत नामे छपवाते हैं, सब दीनी बहनों के नाम, तो क्या किया आपने? दीनी बहनें तो आ जाएंगी, बेदीनी बहनें कहाँ जाएंगी? और अगर एक दीनी बहन जो बेचारी पहले ही कहीं से पढ़ रही है या पढ़ी वो आ भी गई तो आपको क्या फ़ायदा होगा? एक इजाफा ही होगा और क्रिटिसिज्म ही होगा, तकाबुल ही होगा। नहीं, कभी ऐसे जुमले ना, इस्लामी बहनों, दीनी बहनों, फलानी बहनों। दावतनामा एक ऐसा खूबसूरत आम फहम हो, सिंपल सा अंदाज हो, वहशत वाली बातें ना उसमें, बहुत मुबहम बातें ना की जाएँ, ऐसी बात करें कि जिससे शहर टपके और शौक पैदा हो। बस दफ़ा हम अपने दावत नामे यानी जिसको आप फ्लायर कह रहे हैं इस वक्त, उस पर टू मच इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, जिससे फिर साथ नीचे लिखते फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल दिस। कभी आई कॉल? पहली इन्फॉर्मेशन इतनी थी, आपका फ्लायर तो पूरा ख़त बना हुआ था, तो वो फ़ोन क्यों करे? वो कहेंगे सब कुछ तो मिल गया। देखिए इंसान की फितरत है, थोड़ा सा चखता है तो दिल करता और खाए, चलो देखते हैं और क्या, फिर अंदर गए तो बैठ ही गए खाने, और अगर बाहर ही सब कुछ लिखा हो तो अंदर कौन जाएगा? तो लिहाजा ये हिकमत होती है। हाँ, जब आ जाए फिर कहें इकरा बिस्मे रब्बी का। अब देखिए इस्लाम की पहली वही क्या थी? इकरा बिस्मे रब्बी का। ना तो उसमें जन्नत की बात थी ना जहन्नम की थी, बल्कि कहा पढ़िए। पहला काम दावत देने वाले का क्या है कि बंदे को माइल करे, अट्रैक्शन पैदा करे, कायल ना करने लग जाए क्या मैं आपको मुफ्ती बना देंगे, आलमा बना देंगे, हिजाबी बना देंगे, नमाजी बना देंगे, जन्नती बन जाएंगे, और ना किसी को ये कहे कि आप बड़ी जन्नती हैं आप तो ज़रूर आएँ, और ना कहे कि आप तो जहन्नमी आएँ आपको ठीक करके जन्नती बना दें। नहीं, जब स्टेप्स को सामने रखेंगे तो फिर बात होगी। बिलीव मी, आज उम्मत मुस्लिमा के बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि अल्लाह क्या है, वो कोई और खुदा था जिसको कुरान पढ़ने से पहले हम जानते थे, ये प्यारी रब की ज़ात तो नहीं थी। पहले लोगों की अजनबियत दूर करें, हैरत होती है लोगों को, हम छोटे छोटे बुनियादी कदम उठाते हैं ना तो अल्लाह ताला आसानियाँ कर देते हैं, बुनियादी चीज़ों को छोड़कर जब आप जंप लगाएंगे ना तो नाकाम होंगे। आज हमारा अंदाज ही धमकियों, तानों वाला, इल्ज़ाम वाला। अम्बिया करम एंड पे कहते थे इन्नी अखाफ़ वलैकुम अज़ाब यौम नज़ीम, हम क्या कहते हैं? आने तो आए, नहीं आएंगे ना फिर अल्लाह आपको ख़ुद पूछेगा, फिर जाओ भाड़ में। नहीं, कभी ये ना करें। देखिए अल्लाह ने ख़ुद अपना तारुफ़ कैसे कराया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते थे बिस्मिल्लाहिज़ुन्तकाम, तो जब अल्लाह ने प्यार से अंदाज दिया तो फिर मैं और आप क्यों ना करें, लोगों के जज्बात को उभारें, उनको लगे कि ये हमारी ज़रूरत है। फिर आप देखिए कि जब किसी को बुलाए ना, कभी उसको ये फीलिंग्स ना दें कि वो आपकी ज़रूरत है, आप आएँ और हमारी महफिल को हुसन बख्शें। ठीक है, अच्छा जुमला है, लेकिन वो कहेंगे देखा हम नहीं जाएंगे ना तो इनकी महफिल को कोई हुसन नहीं मिलना। आपके नहीं, आप आइए, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। अपनी ज़िंदगी में हुसन भरिए, अल्लाह की किताब सीखिए। मुझे ऐसे लगता है कि जो कुरान की आयतें होती हैं ना, अल्लाह सुब्हान तआला उन उन हालात से गुजार देता है मुझे। पिछले दिनों के सबकों में ये बात दोहराई है कि बल्कि दौरे कुरान में भी बताई थी सूरह स्वाद में, कि दूसरे के हालात दिखा के अल्लाह आपको एक हिदायत देते हैं उसको क्या कहते हैं? वो तो एक अलग चीज़ है। और हुदल बयानी, بیان والی ہدایت کہ اللہ کسی حالات میں رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آیت آج پڑھوانی تھی. میں آپ کو اپنا کل کا ایک ایکسپیرینس سناتی ہوں, اور مجھے ایسے لگا کہ اللہ تعالیٰ شاید مراحل سے ایسے ہی گزارتا ہے. جہاز میں جب ہم بیٹھے, پہلے والی فلائٹ تھی ہماری, دو فلائٹس تھیں کل بیسیکلی, تو جب ہم لنڈن سے کوپن ہیگن کی فلائٹ میں بیٹھے تو جہاز میں آنے کے بعد پہلے میری اور میرے شوہر کی یہی دعا آتی ہے, میری دعا آتی ہے کہ اگر تیسری سیٹ پہ کوئی بیٹھا ہے, دونوں کی جو ہوتی کوئی بھی نہ بیٹھے, کوئی بیٹھا ہے تو میرا دل ہوتا ہے مرد بیٹھے, کیونکہ میں آزاد ہوں, پھر میری بلا سے یہ بولے میں چپ کروں, مجھے بولنا اچھا نہیں لگتا, مشکل لگتا ہے. اور ان کی خواہش ہوتی عورت بیٹھے, پھر یہ بولے گی تو میں چپ. تو کل پہلی فلائٹ میں میرے ہسبینڈ کی دعا قبول ہو گئی, اور پھر الحمدللہ اگلی فلائٹ میں میری دعا قبول ہو گئی. ہم جب گئے تو ہماری سیٹ جو تھی اس کے ساتھ ایک سسٹر آئیں, تقریباً لیٹ 60s کی ہوں گی, 60s, بڑی ینگ, ریڈ سوٹ پہنا ہوا جیسے آپ کو تجا کے پہنتے ہیں بوڑھے لوگ, بوڑھی نہیں تھی لیکن بہت وائٹ اور پنکش اور ہیلدی وومن تھی. خیر, اب ان کی جو سیٹ تھی اس کے ساتھ دو سیٹیں تھیں, تو پہلے میرے ہسبینڈ تھے وہاں بیٹھے ہوئے. جب وہ آئی پہلا, اب آپ کو میں یہ تدریج بتانے لگی ہوں, اور واللہ اس میں کوئی خود نمائی نہیں ہے, پتہ نہیں ہم نے کتنی غلطیاں کی ہیں جو ہمیں نہیں دکھی, اللہ کو پتہ. لیکن میں, چونکہ مجھے پتہ تھا میں نے یہ آیتیں پڑھانی ہیں, کل بھی میں نے اسی لیے اس کو روکا کہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو. قسم اس سے یہ کہ وہ آئی, اب ایک صورت یہ تھی کہ میرے ہسبینڈ بیٹھے رہتے, میں ونڈو پہ بیٹھ جاتی, یہ بیچ میں بیٹھتے اور وہ عورت بیٹھتی, لیکن ہم نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ جیسے میں مرد کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی تو میرے ہسبینڈ بھی عورت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. خیر, وہ جب آ کے بیٹھی, اس نے ایزی لیا اس کو, اس نے نہیں کہا کہ آپ ادھر آ جائیں. خیر, جب وہ بیٹھ گئی تو میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ آپ ادھر آ جائیں, تو اب انہوں نے جگہ سوئچ کی. جو ہی میں ان کی جگہ پہ آئی تو اس نے مجھے ایک اسمائل دیا. اس سے مجھے پتہ چلا کہ عورت ہونے کے ناطے چاہے کوئی مسلم ہے یا نان مسلم عورت ہے, تو وہ پسند نہیں کرتی کہ کسی مرد کے ساتھ بیٹھے. خیر, اس کے بعد کیا ہوا, میں نے بھی اس کو اسمائل کر کے ایک دو چھوٹی سی بات کی. اس کے بعد اس کے ہاتھ میں فون تھا تو وہ اس میں کوئی گیم کھیلنے لگ گئی. اچھا, میرے ہسبینڈ مجھے بار بار کونیاں دے رہے ہیں, بات کرو بات کرو بات کرو. وہ اس کو تو اردو نہیں آتی نا, تو میرا دل تھا کہ میں نے کہا وہ کھیل رہی ہے, کہتے وہ کھیل نہیں رہی, وہ بور ہو رہی ہے, تم جو اسے بات نہیں کر رہی. خیر, قصہ مختصر دیکھیے, اب یہ جو آگے بات بتانے لگی اس کو سن کے ارم بہت خوش ہوں گی. ہوا کیا کہ میرا دل تھا کہ کوئی وجہ تو سمجھ آئے نا بولنے کی. تھوڑی سی بات شروع میں میں نے کر کے پوچھ لی کون ہے, تو اس نے کہا کہ میں جاب کرتی ہوں اور آئیکیا اسٹور یہاں بھی ہے, سویڈن کی تھی وہ عورت, تو وہاں آئیکیا کی کمپنی میں وہ کام کیا کرتی ہے, یا آپ اور میں بلکہ یا آپ کے مینجمنٹ ٹیم بھی سنیں, اس کا کام کیا ہے کہ فیوچر میں جو آئیکیا میں پروڈکٹس لانے ہیں نا, اس کے بارے میں لوگوں کے مائنڈ چیک کرتی ہے. میں نے کہا بھائی یہ کون سا کام ہے, آپ کیا کرتی ہیں؟ کہتی مجھے ڈفرینٹ کلچر کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے. لاسٹ ویک میں کسی عرب فیملی کے ساتھ ہی, وہ کیا پکاتے ہیں, وہ کیا کھاتے ہیں, ان کو کس قسم کے برتن پسند آتے ہیں. فلاں دن میں کسی صومالی کے ساتھ تھی, تو پھر کہتی آئی ایم ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ فار ٹوڈے, آئی ایم ڈوئنگ فار ٹمارو. اب آپ سوچو کتنی عقل مند عورت ہوگی. اور کہتی کہ میری یہ روٹین ہے کہ میں سفر پہ رہتی ہوں اور میں اپنے ٹریولنگ کے ساتھ جاتی ہوں اور دسنگ ہے. خیر, تھوڑی تھوڑی سی باتیں ہو کے خاموش ہو کے بعد اب وہ گیم کھیلتی رہی. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب تقریباً ہماری فلائٹ 1/3 تو پوری ہو گئی, شروع کے 15-20 منٹ تو گزر ہی گئے ہوں گے. اس کے بعد اب کیا ہوا کہ مجھے یاد آیا کہ میرے بیگ میں انجیر ہے, 3 و 3. کل آتے ہوئے مجھے ارم نے بیگ دیا کہ میرے لیے کسی نے گفٹ دی, فریش انجیر تھی. میں نے کہا چلو بات بن گیا, بات تو شروع کرو. جس فلائٹ میں ہم تھے نا, وہ صرف چائے اور کافی پوچھتے ہیں. انہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ ٹی اینڈ کافی از آلویز فری ان فلاں کمپنی نا, دیٹس اٹ. تو یہ مجھے بھی پتا تھا انہوں نے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی کوئی نہیں دینا. اور وہی ہوا, جب وہ آدمی چائے لے کے آنے لگے نا, تو میں نے اپنے بیگ میں سے وہ انجیر نکالی. تو میں نے اس کو کہا ایکسکیوز می, یو لائک فک؟ کہتی یس یس. تو اس نے میری, ایسے لگا جیسے وہ بھی میرے منہ سے بات کرنے پہ منتظر تھی. اس نے اپنی گیم بند کر کے چھوڑی, تو میرے پاس تھا, میں نے کہا اس فریش کے, اوہ واہ, بات کرنے لگ گئی. تو میں نے کہا تم لو, میں نے اس کو دی. یقین کرے کہ اس نے ایک فک, میرا نہیں تھا امید کے لیں, کیونکہ اکثر یہ لوگ نہیں لیتے, اور بالکل اوپن چیز تھی, کوئی اس میں سیلڈ فوڈ بھی نہیں تھا. خیر, اس کے بعد کیا ہوا کہ میں نے اس کو جب دی نا, تو اب مجھے تو موقع مل گیا, وہ بھی پکڑ کے بیٹھ گئی, میں بھی بیٹھ گئی. اچھا, میں نے جب مجھے ارم نے فک دی نا, تو میں نے سوچا کہ یہ میں نے ساری الفت کو دینی ہے, کیونکہ یہ اللہ کی بندی کو دوسری چیزیں تو کھاتی نہیں ہیں, تو اس کو میں نیچرل دوں. 5 تھیں, وہ بڑی بڑی سی تھیں. ایک تو میرے سے صبر نہ ہوا, میں نے وہ ویٹنگ لانج میں کھا لی. میں نے کہا 4 میں الفت کو دے دوں گی. 4 سمیٹی ہوئی تھی. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک انہوں نے لے لی. اب وہ کھا رہی تھی تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نہ کھاؤں, برا لگتا ہے, اور سچی بات تو میرا دل بھی کر رہا تھا. खैर मैंने पकड़ी, अब मैंने उससे बात शुरू की। अब आप सोचे कि मैं उसको इन्वॉल्व करना चाहती थी, मैंने कहा डू यू नो फेक इज़ अ वेरी ब्लेस्ड फ्रूट, देर इज़ अ सूरा इन आवर कुरान। मैंने बस तीन ही बस जैतून पे उसको ले गई और मैंने कहा, डू यू नो वाई, कहती वाह रियली इस पर। मैं कहती यू नो वाई अल्लाह सुब्हान, और क्योंकि चूंकि मुझे सूरत तीन की वो सारी वजह जो मैं आपको याद बताई थी कि तीन नबियों की कौमें हैं, मैंने कहा यू नो द जीसस प्रॉफिट जीसस अलैहिस्सलाम ही वॉज बोर्न देयर, यानी अपनी ज़ुबान में मैंने उसको समझा लिया कि तीन वो फल है जहाँ हज़रत ईसा पैदा हुए थे, वहाँ बड़ा उगता। उसके तो यकीन करें कि ऐसे लग रहा था कि कान खड़े हो गए, जीसस तीन कुरान होली अल्हम्दुलिल्लाह। बस वो फिर जो बेस बनी उसको मैंने सूरत तीन के नाते हज़रत ईसा पे ले गई, ऐसे ग्रेजुअली हम बस आ चाय भी आ गई चाय और वो अंजीर हम खाते रहे। अच्छा फिर मुझे लगा कि उसका और दिल कर रहा है। अब मेरे पास सिर्फ पीछे दो थी, पांच में से एक मैं पहले खा चुकी थी, एक मैंने उसके साथ खाई, एक और उसके साथ थी, पीछे बैग में दो थी। मैंने कहा चलो ये दो बची रहे इसको दे दूंगी, लेकिन मुझे लगा कि उसने फटाफट इंजॉय की खा ली, तो मुझे फील हुआ कि मैं इसको अगर एक दो बार कहूँगी तो वो और लेगी। तो वाकई मैंने उसको जब दोबारा कहा तो उसने एक और पकड़ ली, वो जो एक रह गई मैंने उसको फटाफट लपेट के बैग में रख दिया कि कहीं अब मैं उसकी मुरव्वत में मैं भी ना ले लूँ। वो इंजीर से क्या बात शुरू हुई, हज़रत ईसा, फिर ईसा से कौन, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उतरने तक नॉन स्टॉप उसको कुरान का मैसेज, उसको जीसस की बात, फिर सूरह मरियम खोल के कुरान से हज़रत मरियम की कहानी, जीसस की बर्थ, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर कुरान क्या था, वही जो हमेशा शुरू करती हूँ मैं, उस वक्त रिकॉर्ड नहीं करती वरना यकीन करें वो इतना रिदमिक मौजू होता है, उस वक्त इंग्लिश भी ठीक ही हो जाती है खुद ही, हालाँकि मुझसे नहीं बोली जाती लेकिन वो बस पता होता है कि इसको भी कौन सी इतनी आती है जो मुझे आती है। इतनी फ्रूटफुल बात थी। फिर उसने, मैंने कहा तुम सुना अपना ना, कहती कि मैं किसी रिलीजियस फैमिली में नहीं पैदा हुई थी, बाय बर्थ मैं कोई रिलीजियस नहीं थी, मेरी फैमिली घर वाले कुछ नहीं थे। फिर कहती मैं इस तरह ही पहले मैं कहती थी मेरा कोई दीन नहीं है। फिर कहती जब मैं जवान हुई ना तो मुझे एक दफ़ा कोई एक ऐसा मिला कि जिसने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ चर्च चलो। कहती कि मैं चर्च गई एंड वैन आई प्रे टू गॉड एंड आई फील रिलैक्सेशन एंड दिस इज़ स्पिरिचुअलिटी, यानी बिल्कुल जो आपका मेरा कुरान की क्लास में आने के बाद शुरू का वक्त होता है ना, वही उसकी फीलिंग्स थी। तो कहती देन आई फील आई लाइक इट, आई फील समथिंग डिफरेंस गॉड, क्योंकि देखिए अल्लाह तो अल्लाह ही है ना, कोई किसी रंग से मांगे। कहती फिर उसके कुछ दिन बाद उस औरत ने जिसने भी मुझे, जिस औरत ही या मर्द, उसने कहा कि डू यू वॉन्ट टू बिकम क्रिश्चियन, मैंने कहा येस आई डोंट माइंड। यकीन करें उस वक्त मेरे दिल में ये खैर आई कि देखना इसने जिस तरह उसको कबूल किया ना, तो अगर इसको इस्लाम पता चलेगा तो, क्योंकि उसके दिल में कोई वो नहीं था, तासुब नहीं था। खैर मैंने फिर उससे बात शुरू की, कहती तुम क्या करती हो, मैंने कहा कि इस तरह मैं बस थोड़ा बहुत होली, मैंने पूरी फोकस मैंने ना अपने, उसको क्या पता मेरे हाथ में क्या, ये बुक थी मेरे हाथ में, ये मुझे कल ही वहाँ एक सिस्टर ने दी कि पढ़े इलामा इकबाल की शायरी है, वो मेरे बैग में साथ आ गई, शायद इन दोनों में से एक बुक थी, उसको नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैंने ना फीलिंग्स क्रिएट करने के लिए कि उसको मैं बात करें ना तो इशारा करें तो समझ, तो ये बुक मेरे हाथ में थी, ये वाली बुक थी हाथ में, तो उसको क्या पता ये कहते, जब भी मैं कहूँ ना तो मैं होली बुक कुरान जूँ कहूँ ना, तो मैंने कहा कि मैं कुरान पढ़ाती हूँ और इस तरह उर्दू सिस्टर्स को और उर्दू है और अरबी में और दिस एंड दैट, तो मैंने उसको थोड़ा सा, तो मैंने कहा कि जो फीलिंग तुमने उस दिन ली थी ना चर्च में, ये फीलिंग हम रोज़ लेते हैं। फिर मैंने उसको बताया कि कुरान क्या है, कि वो एक अपडेटेड वर्जन ऑफ तौरा और वो सारा स्टेप्स से, मैं कई दफ़ा ये बात आप लोगों से भी क्लासेस में शेयर की है तरतीब से, उसने मेरी बात यकीन कर ऐसे सुनी, क्वेश्चन किए इतने, मैंने उसमें फिर उनको पूरा हज़रत ईसा का सुनाया कि वो वापस आएंगे, वो जिंदा हैं। कहती फिर क्यों इतने लोग लड़ते हैं आपस में दीन पर, ये तो मुझे लग रहा है कि एक ही चीज़ है। फिर मैंने इस्लाम की बात उससे की, किस्सा मुख्सर के फ़्लाइट पूरी होने वाली हो गई, फिर मैंने उसको कहा कि हम दिन में 17 बार गाइडेंस मांगते हैं, तुम भी अगर प्योर हो तो तुम अल्लाह से गाइडेंस मांगो, और तुम के लिए कहीं भी खड़ी हो जाओ किसी ज़ुबान में भी तो गॉड से कहो कि गॉड प्लीज़ गाइड मी। और मैंने उसको कहा कि तुम किसी मौके पे किसी भी तरह तुम्हें हो तो तुम गूगल पे जाके कुरान खोलो, उसका तर्जमा पढ़ो। और कहती मुझे पता है कुरान और उसको सारा अंदाज़ा था, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इसमें और क्रिश्चियनिटी में इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैंने कहा लेट मी गिव यू सम कार्ड। अब मेरे कार्ड परस में होते ही कोई नहीं है, जो भी परस होता उसमें कार्ड नहीं होता, कार्ड होता उसमें पर्स नहीं होता, और सीडीज़ अल्लाह के हुक्म से थी दो चार, लेकिन उर्दू में थी, नूरुल कुरान तो लिखा था लेकिन उसने क्या करना था उसको, कि मैंने कहा लेट मी आई विल गिव यू माई नंबर एंड देन इट्स ओके फाइन। तो जब मैंने अपना खोला तो कार्ड तो ना मिला, तो मेरा जो पर्स था ना मैं आज भी मेरे पास है, वो ऊपर से ओपन सा है, उसके अंदर ना मेरा एक बॉक्स था छोटा सा, ऐसे ही मैंने जाते जाते जल्दी में चीज़ें पकड़ी ना, तो वो ऊपर से ट्रांसपेरेंट था। मैंने सोचा कि इसको मैंने किसी तरह एंगेज करना है, एकदम और कुछ नहीं तो वो बॉक्स मेरे हाथ में खोला, उसमें मेरी रिंग्स थी। मेरे दिल में आया कि इसको किसी तरह बांधो, तो मैंने कहा ओके आई विल गिव यू कार्ड। मैंने बॉक्स खोला, मैंने कहा सिस्टर पिक एनी वन यू वॉन्ट, इसमें से जो तुम्हें अंगूठी अच्छी लगती है एक तुम लो तो यू विल रिमेंबर मी। बिलीव मी, वो औरत इस तरह मेरा मुंह देख रही थी कि शायद मैं क्रेजी हूँ या वो क्रेजी है, कि इसको क्या हो गया, रियली आर यू सीरियस। मैंने कहा येस, टेक वट एवर यू लाइक एंड इंशाल्लाह ये इट विल कीप रिमाइंड यू। फिर उसने वाकई वही उठाई जो मुझे भी बड़ी पसंद थी। फिर उस वक्त मैंने आयत पढ़ी, लन तनाल उल बिर हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बून, कि सबको देते लेते और वो मेरे पास रहनी भी नहीं, और मैंने कौन सी पहन भी लूँगी तो क्या खूबी होगी, लेकिन ये मैंने उसको दी है जिसको मैंने दोबारा शायद कभी मिलना भी नहीं है। इतने में वो भी अपना पर्स झाड़ने लगी कि मैं अपना कार्ड देती हूँ। इत्तफाक से उसके पास कार्ड था, वो मेरे से ज़्यादा ऑर्गनाइज थी, वो कार्ड अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह है। मैंने कहा ओके कार्ड मिल गया, उस पर उसका ईमेल एड्रेस भी है। मैंने कहा वेन एवर आई विल गो टू आई की आई विल रिमेंबर यू, तो अब इंशाल्लाह हम उसके साथ ईमेल में रब्ता रखेंगे। दुआ करें कि अल्लाह उसका दिल खोल दे। लेकिन जो बात है ना इस पूरे में, फिर उसके बाद उसने बताया, क्योंकि मैं निकाब करती हूँ आप सबको भी पता है, लेकिन जब बीच में आप बैठते हैं और आपके इधर औरत है इधर आपके हस्बैंड है, तो मैं अपना निकाब मोस्टली फिर ऐसे वक्तों में क्या करती हूँ जिसको आप घूंघट स्टाइल कह देते हैं, जैसे इसको ढीला कर लूँ तो मुँह खुल जाता है, खाना खाते हुए भी ना इधर वालों को दिखता है ना इधर को, और सामने दीवार होती है। तो मैं जब उससे बात कर रही थी ना, तो मैंने अपना निकाब खोला, आप कहते उसने मुझे क्या कहा जाते हुए, कहने लगी ये आज ज़िंदगी का पहला मौका है कि मैंने तुमसे एक निकाब वाली औरत से बात की है। ऑलवेज़ जब मैंने निकाब वालों को देखा आई फील स्केर्ड, मैं डर जाती थी, लेकिन तुमसे आज बात करके मुझे तो बड़ा मज़ा आया। तो मैंने कहा बिकॉज़ यू आर वुमेन आई कैन ओपन माई फेस इन फ्रंट ऑफ यू, नो प्रॉब्लम। तो अब देखिए ये छोटी छोटी हर्डल्स होती हैं, हम जब इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में हिकमत के साथ नहीं लेते, कितने मौके हो सकते हैं लड़ाई। मैं उसकी बात सुनती थी बीच में, मैं उसकी बात के दौरान सोच लेती थी कि अब इस कहानी का टर्न किधर जाना है। वल्लाह ये अगर आज इधर होती ना मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग, तो मैं वो बता के आपको प्रैक्टिकली सिखाती कि उदु इला सबीली रब्बी का बिल क्या, कि इसमें ना तो आवाज़ ऊँची हो ना कोई अग्रेसिव होना है, हिदायत तो अल्लाह ने देनी है। और पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है कि वो कुरान ज़रूर पढ़ेगी जाके, ज़ाहिर है अब जब अंगूठी देखेगी तो पढ़ेगी ना, ये तो एक किस्म का उसको टोकन मिल गया ना। तो बात का खुलासा क्या है कि लोगों को पहले दिखाएं कि रब कौन है। और अगर मैं उससे बात करती पिक का गोश्त हराम, सुअर हराम, सूद हराम, दिस दिस, मैंने उसको सिंपल सी बात की कि अल्लाह ताला बुरी चीज़ें पसंद नहीं करता, तो हम भी कैसे करें। फिर उसका बीच में एक क्वेश्चन था, हज़रत ईसा हमारे गुनाहों के लिए कफ़ारे पे चले गए, जैसे नॉर्मली लोगों की बात है। तो मैंने उसको कहा कि तुम स्वीडन में रहती हो, मैं अमेरिका में रहती थी, यूके में हूँ, क्या कोई हुकूमत ये पसंद करती है कि कोई चोरी करे और उसके बाद वो तो भाग जाए और उसकी जगह कोई और आके कहे तुम मुझे उसकी जगह पर डाल दो, कहती ना। तो मैंने कहा क्या गॉड विल बी इनजस्टिस, ये भी बात उसको समझ आ गई। तो बहरहाल दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें इस तरह से बात करें। अब आप जब भी किसी के साथ आपकी लड़ाई हो, मैं आप सबको आज एक बड़ा सख्त किस्म का टेस्ट देने लगी हूँ आज के बाद, जब कभी किसी को या तो आप कुरान की दावत दे रहे हैं या जो जनरल बातें हैं और उसके बाद लड़ाई होती है ना या गुस्सा होता है, तो आप चेक करें कि आपने इसमें से कौन सा स्टेप मिस किया, ये आपका कसूर है, मैं नहीं मानती। देखिए नबियों के ख़िलाफ़ लोग बोलते थे, लेकिन नबियों ने कभी आगे से बदतमीज़ी नहीं की थी। अब इस आयत को अगर आप दोबारा देखें तो जादिल हम बिल्लती याक्सन का मुकाम तो बड़ा आखिर में जाके आता है, वो शुरू में तो नहीं आ जाता। हम शुरू में इन बातों को लेकर इस तरह से पढ़ जाते हैं कि हम कहते हैं कि इनको पीछे कर दें तो लोगों को पहचाने। अब इस तरतीब को जहन में रखा है आपने, क्लियर हो गई है। जब कभी झगड़े की नौबत बनने लगे वहीं गिव अप, पीछे हो जाए, समझें कि बात गड़बड़ है, आपने ज़्यादा हैवी डोज दे दी है, मरीज़ की आंखें सुरख हो रही हैं, उसकी आंखों में पानी आ रहा है, समझ जाएं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और जो चीज़ आपकी जितवाएगी ना वो आपका इखलाक है। ये उसको सीट ऑफ़र करना, ये उसको फेक खिलाना, ये क्या था, उसके दिल में से वो नफ़रत दूर करना। और याद रखें कि ऊपर वाला हाथ ऊपर वाला ही होता है। आप जब नॉन मुस्लिम्स को देने वाले बन जाते हैं, और नॉन मुस्लिम की दावा की तो अब मैंने अमली मिसाल दी है, अभी तो हम अपने घर वालों के जुमलों से जले कुटे बैठे हैं। अभी तो मियाँ साहब कहते हैं कि आज के बाद तो मेरी उस्तानी ही ना बनना, तो मुझे ये ना करना, वो ना करना, जबकि आप देखिए, और मैं बार बार उसको ये कह रही थी, यू माई सिस्टर, आई लव यू, आई लव यू, यू माई सिस्टर, यू एंड मी आर सेम, वी आर फ्रॉम इवन आदम, हम सब बहन भाई हैं। यानी उसको पूरे वक्त में शायद एक भी मेरी तरफ से कोई कड़वा जुमला नहीं मिला। तो याद रखिए, जिसको भी आप दावत दे रहे हैं ना, उसको लेट डाउन ना करें, किसी दूसरे मसलक को करें, किसी दूसरे मज़हब को करें, किसी ग्रोह को करें, इंसान को, उनकी ह्यूमिलिएशन ना करें। बच्चे की भी आप बेइज्जती करेंगे ना उसके दोस्त के सामने, तो वो भी पीछे हो जाएगा। तो फिर हिकमत के अंदर कुछ जनरल चीज़ें आती हैं, उनको फिर नोट कर लीजिए। पहली बात है कि अंधाधुन तबलीग ना हो, सबको एक लाठी से, या छोटे छोटे ना बुलेट जुमले हैं, या आपके जेम्स भी बन सकते हैं, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ कि हिकमत का तकाजा क्या है। अंधाधुन तबलीग ना हो, सबको एक लाठी से ना हंके, बड़े और छोटे का लिहाज करें, चेक करें कि आपका मधु किस दर्जे का। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, आप समझिएगा। कोई गांव है किसी मुल्क में, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। कभी ऐसे होते होंगे ना गांव, हुकूमत कहती है कि ऐसा करते हैं कि यहाँ का एक रास्ता बना देते हैं, सड़क बना दी गवर्नमेंट ने, क्या वो रोड या रास्ता लोगों को फ़ायदा देंगे जब तक कि उनके पास साइकिल, गाड़ी, स्कूटर ही नहीं है। पैदल तो वो वैसे भी चलते थे, ऐसे भी चल लेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने उस शख्स को कोई सवारी लेके दें। फिर जब सवारी की बात आएगी तो आप चेक करेंगे कि कौन साइकिल चला सकता है, कौन गाड़ी चला सकता है, कौन जो है वो ट्रैक्टर भी चला सकता है। जब दीन की दावत दें तो ये कैश दिन सिरातल मुस्तकीम, ये एक सड़क है जिस पे आपने लोगों को चलाना है। पहले मधु को देखें कि उसका दर्जा क्या है। एक शख्स अभी नमाज भी नहीं पढ़ता, तौहीद भी नहीं है, अल्लाह को ही नहीं मानता, आप सिगरेट की बातें छेड़ दें, आप मूछों को छोटा कर दें की बात कर दें, तो लड़ाई तो होगी ना। पहले चेक करें कि अगले की कैपेसिटी कितनी है, थोड़ा थोड़ा बोझ डाल के उसकी स्ट्रेंथ फील करें। आप कोई नई चीज़ खरीदते हैं, आप पहले चेक करते हैं ये कितनी पक्की है, इस पर इतना वज़न डालूँ, इतना डाल दूँ, उतना डाल दूँ। और जब आप फील करते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, तो अल्लाह के हुक्म से फिर हो जाती है। और आप देखिए कि फिर इसके अंदर एक और चीज़ है कि नफ्स पहचाने, मिजाज फ़र्क होता है। हकीम लोग जब दवाई देते थे ना, तो पहले चेक करते थे कि इसका मिजाज ठंडा है या गर्म है, क्योंकि सिर्फ दवा का असर बदल जाता है। कुछ लोग ठंडा मिजाज होते हैं, कुछ गर्म होते हैं। ठंडे मिजाज को अगर आपने ठंडी ठंडी बातें सुना दी, तो वो और ठंडा हो जाएगा, आप तो बड़े नेक हैं, आप क्या पता अल्लाह को आपकी क्या दा पसंद आ जाए, ये नहीं। फिर उसको थोड़ा गर्म करें, उसको जोश दिलाएं, गैरत दिलाएं कि ये कोई तरीका, तुम्हारी बीवी क्या पहन के फिरती है या तुम्हारी बहन क्या करती है। फिर थोड़ी सी गर्म जोशी का अंदाज हो, और किसी का मिजाज ही पहले ही गर्म है, तो फिर आप उसको ऊपर से गर्म बात भी सुनाएं, और माशाल्लाह आपका अंदाज़ और तेवर और जो आपके ऊपर आंखों पे जो पट्टी पड़ी होती है, तो वो, तो ये सारी चीज़ें जब आप देखेंगे ना, तो इसका फ़ायदा होगा। आप इस सारों को अपने सामने रखें। फिर आप देखिए कि बहुत लंबी बात ना करें, नए लोगों को 40-45 मिनट से लंबी बात ही ना दें। स्टूडेंट को तो आप 5 घंटे भी बिठा लें, वो फिर भी कहते हैं वक्त का पता नहीं चला, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बढ़ चुकी है। फिर इसी तरह आप देखिए कि आपकी आवाज़ में उतार चढ़ाव हो, कभी ऊंची कभी आहिस्ता, जिस बात की गर्मी हो, नरमी की बात हो। फिर इसी तरह आप देखिए कि नबियों के तरीके को फॉलो करें। हज़रत यूसुफ़ ने इस आयत 108 में क्या कहा, कुल हाजी ही सबील यदू इलाल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन तबानी, आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ पूरी बसीरत के साथ, मैं ख़ुद भी और मेरे पैरोकार भी जो इस रास्ते पर हैं। तरीके से बात करें, हाँ जब कोई ना माने, चिड़े, बहुत बड़ा बनता है, तो फिर जा दिलम बिल्लती याक्सन। एक स्कॉलर कहीं गए बड़े मॉडर्न लोगों में, वो बेचारे दर्स के लिए खड़े हुए, तो लोगों ने जीबोगरी बातें शुरू कर दी, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, यानी गुस्ताही की बात थी। अब ऐसे वक्त में वो अगर कहते नहीं आप तो बड़े नाइस हैं, बड़े अच्छे हैं, तो उन्होंने और फूलना था। उन्होंने कहा कि देखें, टॉपिक तो मुझे कोई और दिया गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप लोगों को मैनर्स पे दर्स देने की ज़रूरत है, और अब मैं आपको मैनर्स पे दर्स दूंगा। कहते हैं ये जुमला बोलने की देर थी कि हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया। अगले को देखें वो क्या है, यानी अगले के अंदर वो जो एक भूस सवार है ना अपने बड़े होने का, उसको भी निकालें। आप अभी तो इस लेवल पे हैं ना, हम अभी तो ये छोटे छोटे काम कर रहे हैं ना, थोड़े से लोगों में बैठ के पढ़ाते हैं। यकीन करें अगर आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट है ना, तो एक कामयाब टीचर को पता होता है कि किस स्टूडेंट की बात को कितना किस तरह टैकल करना है। आप किसी को हाथ पकड़ाएं तो वो आपकी बाजू भी निकल जाए, और किसी बेचारे को बुलाता नहीं, बोलता नहीं, और आपके प्लीज बोलें, थोड़ी बात करें, उसको मोटिव देना, इंसेंटिव देना। आपके अपने बच्चों में दोनों तरह के बच्चे होंगे, कोई एक्स्ट्रा बोल्ड है, उनको ये भी भूल जाता है कि आप को बात किस तरीके से करनी थी, और कुछ बेचारे बड़े दबे में। तो अपने बच्चों की पर्सनैलिटी देखें, दबे हुए बच्चे को उभारें और जो उभरे हुए उनको थोड़ा सा दबाएं, ताकि बैलेंस रहे, और फ़ायदा उनको खुद होगा। कुछ बच्चे बहुत ऊंची बोलते हैं, मुझे याद है एक फैमिली, बच्चे थे वो ऊंची बोलते, कोई एक बच्चा ज़्यादा ऊंची बोलता है, तो उनके बाप हमेशा उसको टोकते थे आहिस्ता। अब वो बाप की बचपन की बातें सुनी हुई, जब वो बच्चे बच्ची या बच्चा जो है बड़ा हुआ, तो उसके लाशौर में आ गया कि बचपन में ही जब हम होटल में खाना खाने जाते थे तो अब वो इशारे करते थे आहिस्ता, तो यकीनन फिर मुझे आहिस्ता बोलना, फिर वो नॉर्मल बोलने लग गया। तो हम अपने बच्चों की चीख चिंगाड़ को कभी बर्दाश्त ना करें। टॉपिक ये बहुत बड़ा है, अगर आप चाहें तो हम इसको आगे भी बाद में ले सकते हैं। अच्छा, आपको तो मैंने पूरी कहानी नहीं सुनाई, ये तो मेरी स्टोरी थी, फिर इसके अगली फ्लाइट में मेरे हस्बैंड की बारी आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी इतना अच्छा ब्रदर मिला, वाइट ब्रदर था, और ज़ाहिर है वो पहले बैठा हुआ था, हम बाद में, तो मैं तो खुश हो गई, एक तो मुझे विंडो मिलेगी, दूसरा मुझे बोलना नहीं पड़ेगा। तो फिर उसके बाद माशाल्लाह ये पूरा वक्त, और कुछ बड़े फ्रेंडली होते हैं, उनसे थोड़ी सी बात शुरू करें ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा घूमने वाला शख्स था, और वो बता रहा था कि वो इन दो तीन मुल्कों में रोज़ सुबह कहीं शाम कहीं रात को अपनी जॉब के सिलसिले में जाते हैं, बल्कि किसी जापानी कंपनी के लिए काम करता है, तो उसका भी काम बहुत ज़्यादा ना पब्लिक डीलिंग का था। एंड तक वो इनके साथ बातें सुनता और करता रहा, और मैंने नहीं कोई ऐसी बात, मुझे इनकी बात से ज़रा डर लगता था कि इसके जवाब में वो कोई बात हो सकता है अग्रेसिव करे। राइट, तो मैंने ये सोचा कि बहुत सारे लोगों तक कभी मैसेज नहीं पहुँचा हुआ, हम ऐसे ही सोच लेते हैं कि इनको पता है, तो शुक्र अल्लाह का कि मौका। और मैं सोचती हूँ कि ये जो दावा ट्रिप्स होते हैं, ट्रैवलिंग होती है, इसमें ये बड़ा मौका मिलता है। हम वहाँ सिक्योरिटी के बाद जब वेटिंग रूम में थे, जहाँ जहाज़ में आना था, बिल्कुल ये लंदन एयरपोर्ट पे ये हुआ, तो एक आदमी जो वहाँ चेक करते हैं ना पासपोर्ट, बिल्कुल जहाज़ में जाने के वक्त आखिरी पासपोर्ट जो चेक होता है, तो उस वक्त वो शख्स वहाँ खड़ा था, तो उसने पासपोर्ट देखा, पहले इनका देखा फिर मेरा देखा, तो मुझे कहने लगा कि आइडेंटिफिकेशन चाहिए होगी ना, तो मैंने उसको कहा कि कोई लेडी है, ऐसी हल्की सी बात हुई। उसके बाद उसने ना क्या किया कि मेरे उसको स्टैम्प लगाया और मुझे एकदम कहने लगा मा सलामा, ऐसे हाथ को करके ना मा सलामा, यानी अरबी में मुझे कहा कि मा सलामा के सलामती के साथ जाओ, लेकिन जब उसने हाथ यूँ किए तो मुझे लगा जैसे इंडियन हिंदू लोग करते हैं। खैर हम अंदर आके वहाँ बैठ गए, उसके बाद इंतज़ार कर रहे थे जहाज़ का, तो वो अकेला था, सब लोग ऑलमोस्ट आ गए, तो मेरे हस्बैंड ने कहा किधर है, देखा तो उसके सब बातें कर रहे हैं, तो मैं जाके देखा कि वो उसको उसको कहें तुमने ये कहा, यानी एक नुक्ता मिल गया ना, अच्छा तुमने ये कहा तुम अरब हो, तुम कौन हो, तो ये फिर उसके साथ बातें करते रहे। तो मैंने ये देखा कि ये मुझे याद आता है कि सहाबा कराम का जो दौर था ट्रेवलिंग का और भागते थे, इससे इस्लाम फैलता था। आज आप कहते हैं आप कोने में छुप के बैठ जाएं, इस्लाम नहीं फैलेगा, आप अपने बच्चों को पूरी जुरत और एतमाद से पालें, और उनको कहें बस करना क्या कि जहाँ जाओ अपना रंग दो ना के लो, और अगर आपने बड़े सॉरी मुस्लिम बनाने हैं तो फिर तो आप मक्का में भी जाके उनको सॉरी मुस्लिम ही बनाएंगे, तो बस माँ के अंदर जुरत आएगी। तो मैं उसको बार बार क्या कह रही थी, मैंने उसे कहा कि यू नो के यू फील आई हैव कॉन्फिडेंस, कहती यस यू हैव कॉन्फिडेंस, मैंने कहा दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ मी, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस बुक, मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस इस किताब के, क्यों, कहती कि मैंने सुना है कि जीसस हमारे गुनाहों के लिए चले गए ना, मैं उसकी बात सुनती रही, बाद में मैंने कहा कि एक्सक्यूज़ मी कैन यू टेल मी हु टोल्ड यू दिस, कि जीसस हमारे गुनाहों पे चला गया, तो सोच के पड़ गई, आई थिंक सो आई हर्ड फ्रॉम दिस दिस दिस, तो मैंने उसको वहीं पकड़ लिया, मैंने कहा देखो वो तुम्हारी दोस्त ने कहा, किसी ने कहा, यू आर नॉट श्योर, मैं कह दूँ आप कह देना, बट बिकॉज आई एम श्योर, बिकॉज मुझे पता है जो बातें मैं तुम्हें कह रही हूँ वो इस बुक में, तुम इस बुक में से पढ़ो, तो माई कॉन्फिडेंस इज़ बिकॉज ऑफ गॉड्स वर्ड्स, कि मेरा अल्लाह पे, तो उसको कम अज़ कम इस चीज़ का तो कल एहसास हो ही गया होगा कि कुरान एक रियलिटी है और इसको हम ज़रूर पढ़ें, और जिसने कुरान पढ़ी फिर चल पड़ेंगे तो अल्लाह ताला ले ही जाएगा ना आगे जाके। अल्हम्दुलिल्लाह।
ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين.